2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और बंधन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गूगल मीट का, यूट्यूब लाइव का, जिसमें भी आपको सीधा हो आप जुड़ सकते हैं। ये लिंक दोनों ही चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते, ताकि आपको रोजाना लिंक का इंतजार नहीं करना पड़े। और यदि आपको उसके बाद भी जुड़ने में कठिनाई आ रही है, तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप देख हो। आज की मुरली का साथ, मीठा मीठा बाबा, कैसे मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली। ये ज्ञान की दृष्टि क्या होती है? ये ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान की समझ कैसे सब माना जाए कि हमें ज्ञान की दृष्टि मिली? कैसे, क्या प्रोसेस है इस ज्ञान की दृष्टि, कौन बताएगा? बाबा ने हमें ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, हमने लिया या नहीं लिया, हमने सुना नहीं सुना, इसका सबूत क्या होता है? हमने उसे अपने जीवन में धारण किया या नहीं किया? इसलिए हमारे ज्ञान के, हमारी इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट ज्ञान जो हमें बाबा ने मिला, ये ज्ञान मुरली सुनना माना ज्ञान को प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, सूचना प्राप्त करना। ज्ञान का पहला स्टेप है, हम आए, हमने मुरली सुनी, हमें इंफॉर्मेशन मिली, सूचना मिली, ये ऐसा होता है, ये है वो, जो भी। अब उस ज्ञान के लिए हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है योग, जिसके लिए बाबा ने हमें एक वशीकरण मंत्र दिया, मन मना हा। अर्थात जो ज्ञान आपको मिला है, उस ज्ञान को आप बैठकर मंथन करें और अपनी बुद्धि को स्वीकार करें। बुद्धि को स्वीकार कराने का मतलब है अपने कर्म में लाना, प्रैक्टिकल में लाना। हमने ज्ञान तो सुना, परंतु वो हमारा प्रैक्टिकल में नहीं आया, हमने उसको जीवन में अप्लाई नहीं किया, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ जानकारी है, वो हमको जानकारी मिल गई है। अब वो याद है या नहीं है वो भी पता नहीं, वो भी हर एक के ऊपर निर्भर करती है। कईयों से पूछो मुरली में क्या सुना, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा, पर ठीक बात है, कोई भी हो, मैं भी हूँ, मैं भी सारी बातें एकदम से याद नहीं रख सकता, और सभी बातें याद नहीं रख सकते, क्योंकि हर एक की मेमोरी कैपेसिटी अपनी अपनी। मैंने वो भी देखे हैं जो एक बार मुरली को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और पूरा पढ़कर सुना दे, बिना देखे एकदम पूरे पेज को ही स्कैन कर देते, वो भी इंफॉर्मेशन है, वो भी तब तक याद रहेगी जब तक वो उस स्कैन को अपने सामने रख पाता है, एक दिन, दो दिन, उसके बाद पूछा जाए तो उसे याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्कैन को अपने पास रख सकता है, उसको पिक्चर को, इमेज को इस प्रकार से ले लेता है, वो इमेज को पढ़ता है, जब तक इमेज है तो उसको पता है, बाकी वो इंफॉर्मेशन भी उसके जीवन में नहीं जा सकती। अब जीवन में जाने के लिए हमें वशीकरण मंत्र, मन मना भाव के आधार पर अपने आप को समझाना है और अपने जीवन में उसको लाना। जब वो जीवन में आता है तो बुद्धि ने उसे स्वीकार कर लिया। इनिशियल स्टेज पर उसे बुद्धि ने स्वीकार कर लिया। आपके द्वारा, मन के द्वारा, बाबा के द्वारा वो ज्ञान कितना पावरफुल था कि बुद्धि ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम उसको मेरी आदतों ने रोक दिया, नहीं ये नहीं करना है। अब अगली बार वो नहीं होगा तो हमारे जीवन से आया हुआ भी चला गया। धारणा हमने कर्म किया परंतु अभी वो हमारी धारणा नहीं बना। बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, हमने एक बार कर्म भी कर लिया परंतु बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया, बस धारणा नहीं हुई, कानून नहीं बना। और ये कब कानून बनता है? जब हम उसको बार बार करते हैं तब वो हमारे जीवन की धारणा बनता है, हमारा संस्कार बन जाता है। जब वो हमारा संस्कार बन जाता है तब हम औरों को भी बता सकते हैं कि देखो मैंने अपने जीवन में इस बात को इस प्रकार से धारण किया, मैंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया, आप भी इसे अपना हिस्सा बना सकते हैं। जब मैं बना सकता हूं तो आप भी बना सकते। तो इस प्रकार से अपना अनुभव सब भाई बहनों को देखकर हम सेवा करते, ये हमारे ज्ञान का। अब ये जब चारों सब्जेक्ट में से कम जब तीन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, मीन्स जब कोई भी बाबा की बात हमारे जीवन में धारण हो जाती है तब ज्ञान की दृष्टि बनती। ज्ञान देने वाली बात है, ज्ञान की दृष्टि कब बनती है? जब कोई बाबा के द्वारा दिया गया डायरेक्शन मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उस अनुसार मैं देखना शुरू करता हूं। यदि मैंने अभी तक देह को देखता हूं, मैंने आत्मा को नहीं देखा है, तो मैंने आत्मा का पाठ अभी तक पूरी तरह बुद्धि को स्वीकार नहीं कराया, कहीं ना कहीं अभी कमी है। तो उसके लिए योग करने की जरूरत है। योग का मतलब है बैठकर हम अपने आप को समझाएं, मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्माएं हैं, यानी ये झूठा देह का संबंध है, इसके प्रति आकर्षित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एक बात जो बाबा रोजाना इतने समय से, जितने समय से आप बाबा से पढ़ रहे हो उतने समय से आप सोचिए कि मैं ये बात अपने आप को अभी तक समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी दृष्टि नहीं बनी है, ज्ञान की दृष्टि नहीं बनी है। ज्ञान को सुनने से ज्ञान की दृष्टि नहीं बनती, ज्ञान को धारण करने से ज्ञान की दृष्टि बनती। इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। जब आपकी धारणा हो जाएगी, आपका संस्कार बन जाएगा, तब आपकी दृष्टि श्रेष्ठ हो जाएगी। क्योंकि दृष्टि को श्रेष्ठ करने से पहले धारणा के बीच में एक शब्द आता है वृत्ति। क्योंकि जो मेरे संस्कार हैं, उन कुल संस्कारों का जो रूप प्रस्तुत होता है वो बनता है वृत्ति। धारणा से वृत्ति बनती है, क्योंकि वो धारणा जब लगातार चलती है तब वृत्ति बनती है। धारणा भी एक दिन दो दिन से नहीं, यदि धारणा करके फिर छोड़ दिया तो फिर वो वृत्ति में भी नहीं आएगा, फिर दृष्टि में भी नहीं आएगा। जब वृत्ति बन जाओ, वृत्ति होती है, उसी के अनुसार हम दृष्टि, हमारा देखने का नजरिया बन जाता है। उसी प्रकार के ही शब्द हमारे मुंह से निकलते, उसी प्रकार के शब्द या उसी प्रकार के कर्म हमारे द्वारा होते। दृष्टि, बोल और कर्म, ये तीनों हमारे उसी प्रकार से हो जाते हैं। और जब वो बाबा की श्रीमत पर हो गए, बाबा के ज्ञान के अनुसार हो गए, तो हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से सेवा कर सकते। अदरवाइज में तुम्हारा भटकना बंद हुआ, तुम शांति धाम सुख धाम को याद कर। क्योंकि अब हमारा संस्कार जब बाबा की श्रीमत के अनुसार बन गए हैं तो हमारा टारगेट भी चेंज हो गया। अब हमारा लक्ष्य हो गया कि हमको शांति धाम और सुख धाम में जाना और उसके लायक बनना। प्रश्न, देवताओं में कौन सी ताकत है, वो ताकत किस विशेषता के कारण? देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। ये ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण, विशेषता के कारण, क्योंकि सब एक मत होते हैं, सब एक मत होते हैं, यही कारण है कि वो ताकत आती है। क्योंकि सारे एक विचार वाले, एक कहे इधर जाना है, दूसरा कहे उधर जाना है, तीसरा कहे उधर जाना है, तीसरा कहे चौथा कहता है ऐसे करो, पांचवा कहता है ऐसे करो, सबके मत अलग अलग हो तो उनमें ताकत नहीं आ सकती, एकता में बल होता है। जब सारे एक मत हो जाते हैं तो उनमें ताकत आ जाती है। और उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है, सारे एक मत तो हैं, परंतु एक मत किसकी है? वो बाबा शिव बाबा की। एक मत पर सारे हो जाते हैं, इसी कारण वो पहले आते हैं, इसी कारण उनके अंदर देवी गुण और देवी संस्कार जैसा बने हुए हैं, जिसके कारण वो शक्तिशाली, वो ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वह एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की जरूरत है। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वह एक राजा की एक देवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती है, दूसरा कोई विचार होता ही नहीं। आज तो दुनिया भर की पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, हर एक व्यक्ति के विचार अलग अलग हैं, इसलिए यदि इलेक्शन में फ्री खड़े होने के लिए कहा जाए तो सारे खड़े हो गए, परंतु ये थोड़ा पैसा खर्च होता है तो वो तो क्या ठीक है, मतलब कहने का फ्री हो, कोई खर्चे की ना हो और उसके बाद कोई बात ना हो, तो मतलब कहने का है कि सारे कहेंगे हम बनेंगे। दूसरी मत होती नहीं जी, नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन? ज्ञान के नैन नहीं थे, ये आंखें तो थी, अज्ञान के नैन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बात है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सद गति हो और शांति धाम सुख धाम जाना। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है, कैसे सुख धाम बदल कर फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है, माया का राज्य व दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु। भक्ति मार्ग में यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई रहा नहीं मिलती, ज्ञान यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई रहा नहीं मिलती, शांति धाम सुख धाम जाने, शांति धाम सुख धाम जाने की। हर एक का अपना पार्ट बजाना है, हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। बात कहते हैं मुझे भी पार्ट मिला हुआ है, मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं, शांति धाम सुख धाम में भटकना होता है। शांति धाम सुख धाम में क्या करना होता है? भटकना होता ही है। वहां कोई भटकना नहीं, क्योंकि ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। लेकिन शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं, ठीक है। ये भी तुम जानते हो, वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं। वो शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ते हैं और जिस्मानी पढ़ाई पर को ही जानते हैं, और इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सदगति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है दैवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। ये भी भारतवासी जानते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था, उस समय कोई और धर्म नहीं था। तो बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब हैं कल युग में। तुम पुरुषोत्तम बत्संगम पर बैठे हो, जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्री मत पर चलते हैं, वे संगम युग पर है। बाकी कल युग में अभी कोई सावरंटी किंगडम तो है नहीं। सावरंटी माना भी राजा होता है, किंगडम माना भी राजा होता है। इस समय सावरण की प्रभु सत्ता को कहा जाता है, जो जिसके पास सारी शक्ति, किंगडम भी जिसके पास सारी शक्ति हो, जो राजा हो, तो है नहीं। अनेक मतों से राज्य चलता है, सत्युग में तो एक महाराजा की मत चलती, बस जो महाराजा ने कह दिया उसे ही सारे मानते, एक की ही मत चलती है। वजीर होता ही नहीं, इतनी ताकत रहती है, फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वो ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य। सत्युग में एक मत होने से ताकत रहती है, अभी तुम वे ताकत ले रहे हो, अभी तुम वे ताकत ले रहे हो। 21 जन इंडिपेंडेंट राजाई करते हो, एक जन, दो जन नहीं, कितने जन? 21 जन कैसी राजाई करते हो? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट माना आजाद, कोई भी किसी भी प्रकार के बंधन नहीं है। राजा भी किसी प्रकार का कोई ऐसा नियम नहीं बनाता जो किसी को उसके अंदर बंधना पड़े। सारे के सारे सत्व प्रधान होते हैं, सारे अपने नियमों को अच्छी तरह जानते हैं। किसने बताए थे उनको नियम? बाबा। इस संगम पर उनके नियमों के अनुसार संस्कार बना दिए। आज मैं छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे अभी हमारा नया संविधान बना है, नया संविधान बना का मतलब संविधान के अंदर बहुत सारी बातें परिवर्तन किए गए हैं, अंग्रेजों के समय के बने हुए बहुत सारे नियमों में परिवर्तन करके एक नया हिस्सा, जो हमारे दंड संहिता के जो नियम बने हुए थे उनको हटाकर नए नियम बना दिए। और वो 24 से शुरू हो चुके, 1 जून 24 से शुरू हो चुके, 1 साल हो गया उसको चालू हुए। परंतु आज की डेट में भी मैं ये कहूं कि 90% लोगों को उन नियमों के बारे में कुछ पता नहीं। मैं 10% में बहुत सारे चेंज, बदल दिए, बहुत सारा बदल दिया, 1 2 3 4 5 नहीं, बहुत सारा, पूरा का पूरा जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे न्याय के, वो सारे के सारे बदल दिए, सारे के सारे। उसके लिए पूरे के पूरे जहाँ उनका बहुत सारी बुक थी, पूरी पूरी वो बुक सारी चेंज करके उसमें नए तरीके से आज की वातावरण परिस्थितियों के अनुसार सारे कानून बना दिए, और वो अवेलेबल है, उनके लिए एक ऐप भी बनी हुई है उसके लिए, मतलब दुनिया में अवेलेबल है। परंतु जिनको इंटरेस्ट है, जिनको जरूरत पड़ती है, वही उनको पढ़ता है, वकील भी वही पढ़ते हैं जब उनके सामने कोई बात आती है। मैं पुलिस वालों को भी देख रहा हूँ, वो भी देखते हैं जब आता है तो, फिर क्योंकि पुराने को उनको याद थे, अब वो भी पुलिस वाले भी देखते हैं कि इसको किस धारा में रखा जाए, क्योंकि धाराएं बदल दी है, उनके नाम ही बदल दिए हैं, ये नहीं। तो इस प्रकार से ये सारे जो परिवर्तन हुए वो किसी को मालूम नहीं है। परंतु कोर्ट के अंदर आप जाकर ये कहो कि मुझे तो मालूम नहीं है, नो एक्सक्यूज, आपकी ड्यूटी है कि आप सारे नियमों के बारे में जाने। तो परमात्मा सत्युग में उन आत्माओं को भेजते हैं, या वो आत्माएं अपने पाठ के अनुसार आती हैं, जिनको उन नियमों को अपने जीवन में पूरी तरह धारण किया हुआ है। अब न्याय के लिए उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती।
जैसे तो मतलब लॉ बदल जाता है, तो लॉयर वगैरह
होते हैं,
तो उनको भी सारी
धाराएं दोबारा सीखने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़नी पड़ती है, जज को पढ़नी पड़ती है, पुलिस वालों को पढ़नी पड़ती है। उनके लिए तो वो क्या करते हैं, सेमिनार रख देते हैं, उनकी क्लासेस लगा देते हैं, ये करो। जजेस की भी ट्रेनिंग चलती है, उनको भी बता दिया जाता है कि ये नियम है, इन नियमों के अनुसार आपको फैसला करना होगा। पुराने नियम बदल गए हैं, नए नियम लागू हो गए हैं, 1 जून 24 से ये नए नियम लागू होंगे। उसके बाद जो भी केस होगा वो नए धाराओं के हिसाब से होगा, उससे पहले कोई दुर्घटना है तो पुरानी धारा के हिसाब से।
हाँ
जी,
हाँ
जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नियम ही बदल गए। और जैसे वहाँ मान लो वहाँ 10 यदि प्रैक्टिस करने तो पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो उसके पास कोई केस जाएगा तो हार जाएगा, वो धारा तो नहीं लगा सकता, धारा लगाना तो पुलिस का काम है, है नहीं? वो बुक हर एक पुलिस स्टेशन में भेज दी गई है कि आप इसको पढ़ के इस प्रकार से धारा को लगाइए, हर पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच गई है, मतलब ऐप भी बन गई है, आपको मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है, मतलब तो किसी के पास टाइम हो पढ़ने का तो वो पढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पर मुझे आया कि बाबा सारे नियम धारणा करके भेजता है, अब जिसने जितनी धारणा की है उसी आधार पर वो इस संसार में पाठ बजाने के लिए आता है। सत्य के आदि में वो आत्माएं आती हैं जिन्होंने अपने जीवन में 100% वो धारणा की है, धीरे धीरे वो आत्माएं आना शुरू करती हैं जिन्होंने 99% की है, 90% की है, 70% की है, 50% की है, सारी आत्माएं उसी प्रकार से आती हैं। अब जब कम धारणा वाली आएंगी वो गलती करेंगी, जब वो गलती करेंगी तो उनके लिए कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी, समझ गए बात? तो गलती करना शुरू कब होता है, जब हमारे जीवन में धारणा नहीं है। अभी ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो, यदि आप ईश्वर की याद में नहीं रहते हो तो ईश्वरीय परिवार के नहीं। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। एक सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर एक सेकंड में आसुरी संप्रदाय को बन जाते हो। अभी अभी आप बाप का कहना मान रहे हो, ईश्वरीय संतान हो, और अभी अभी आपने बाबा का कहना मानना बंद कर दिया तो क्या बन गए? आसुरी संप्रदाय बन गए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगर तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे, देह बिगर तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें, हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते, बिगर काम भी याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। यही मेहनत है भक्ति में। ऐसे कोई थोड़े कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है, सवेरे 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 शाम व रात को, फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वे बुद्धि में रहते हैं। अनेक शास्त्र हैं, वे भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना न बनाना है। ये मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने से। ये मुरली किस लिए छपाई जाती है? ताकि पढ़कर हम रिफ्रेश हो जाए। बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, ना ये मुरलियां रहेंगी ना ये किताबें रहेंगी, ये सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप, सारा ज्ञान किस में है? एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहां योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, मतलब ज्ञान भवन विज्ञान भवन, ये गवर्नमेंट ने रखा विज्ञान भवन, तो वहां पर ज्ञान का प्रैक्टिकल थोड़ा ही सिखाया जाता है। वहां योग के बारे में कुछ बात ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है और विज्ञान का क्या है। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, सूचना को, और विज्ञान कहा जाता है उसको अपने जीवन में कैसे प्रैक्टिकल किया जाए। विज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल करना, और प्रैक्टिकल करने का मतलब है योग। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो, ज्ञान है पढ़ाई और विज्ञान है योग। ज्ञान से मिलता है धन और योग से मिलता है हर्ष, जिसको विज्ञान कहा जाता है। और ये ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वे जानना है, परंतु वे पढ़ाई है हद। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में, हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते हैं, कितना समय और कब राज्य करते हैं करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया, फलाना निर्वाण गया, वाणी से परे चला गया, परंतु या ज्योति ज्योत समा गया। वास्तव में कोई भी आत्मा परमात्मा में नहीं समा सकती, रहेगी अलग है, और ज्योति ज्योत समा नहीं सकती, कोई वाणी से परे नहीं जा सकता। ये दोनों ही बातें गलत है, निर्वाण में भी जब जाएंगे, जब परमात्मा सबको लेके जाएंगे। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है, सबसे सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। उस आत्मा में क्या भरा हुआ है, अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखों वर्ष का। इस समय ही जबकि बाप ने आकर क्या किया है, सहज राज योग सिखाया है, सहज राज योग सिखाया है। घोर अंधियारे में सारी दुनिया क्या है, घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर उस घोर अंधियारे से बाहर निकाल रहे, बाबा हमें आकर क्या कर रहे हैं, घोर अंधियारे से बाहर निकाल रहे हैं। और पांडव रोशनी में है, वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40000 वर्ष पड़े, कलयुग में अभी तक 40000 वर्ष पड़े। कहाँ लिखा हुआ है कलयुग में अभी 40000 वर्ष पड़े हैं, कोई आपसे पूछे तो क्या जवाब दे सकते हैं, ये जो हर साल के लिए जंत्री बनती है, पत्रा बनता है, एक तो छोटा छोटा कैलेंडर बना करके घरों में दीवारों पर लगा होता है, उसमें नहीं, जो बड़ी बुक के रूप में हर साल जंत्री बनती है, पत्रा बनता है, पूरा विस्तार से सारा वर्णन किया जाता है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कलयुग अभी 40000 वर्ष पड़ा है और चारों युगों की आयु भी उसके अंदर लिखी हुई है। चारों युगों की आयु भी लिखी है, 4,32,000, 8,64,000 साल, हर एक युग की आयु भी लिखी हुई है और हर युग की आयु के बाद ये भी लिखा हुआ है कि 40000 वर्ष अभी पड़े। और तीसरी बात उसी बुक में लिखी हुई है साथ के साथ कि 5000 साल पहले महाभारत हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। जो पुरानी बुक है उसमें यही लिखा हुआ मिलेगा। अभी मैं देख रहा हूँ, लगभग 10-15 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, 10-15 साल पहले किसी ने लिख दिया कि कृष्ण का जन्म आज से 5000 कितने साल पहले हुआ था, मतलब 5010 लिख दिया, 5008 लिख दिया, उसने बकायदा बताया कि उस समय वो संयोग था जिस राशि में कृष्ण जो है पैदा हुआ। तो उसके बाद से एक एक साल बढ़ता जा रहा है, परंतु वो उन बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये गूगल में लिखा हुआ। गूगल में आप लिखेंगे श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ तो वही एक इंफॉर्मेशन है, वो तुरंत आपके सामने आएगी, आज से 5000 कितने साल पहले कृष्ण पैदा हुआ था। ठीक है कि नहीं, तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये 40000 हूबहू वही का वही लिखा आ रहा है जब से जंत्रियां बन रही हैं। और हम हर 5000 साल बाद आकर के जब इस मुरली को पढ़ेंगे फिर भी लिखा होगा 40000 साल पड़े हैं। 40000 साल का मतलब 8 बार हम चक्कर लगा चुके हैं, परंतु मैं ये कहूंगा कि 8 बार भी चक्कर लगाएंगे तो 8वीं बार भी यही लिखा होगा 40000 साल, और अनगिनत बार चक्कर लगाएंगे तो भी लिखा हुआ होगा 40,000। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि भगवान आया है इस पुरानी दुनिया में, भगवान आया है इस पुरानी दुनिया में, सब मौत सामने खड़ा है, सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं ये तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, ये एयर सब। हाँ जी,
जो बुक है जिसमें तिथि तारीख पूजा सब का डेट लिखा हुआ होता है, उस बुक में लिखा है ऐसा?
उसको बोलते हैं पत्रा जंत्री, मतलब पूरे साल का उसके अंदर कैलेंडर पूरा बना होता है और विस्तार से लिखा होता है। मतलब उनके नाम कई हैं, अलग अलग नाम से बनाते हैं, मार्तंडेय नाम है एक, यानी और भी बहुत सारे हैं। तो आप बड़े वाला, उनको पूछना है बड़े वाला दे, ये छोटे जो हाँ बुक होती है वो, यानी हर साल की बुक बनती है और जो विस्तार से बनते हैं, जिसमें पूरा विस्तार से लिखा गया हो, तो वो आपको बुक मिलेगी। और उस बुक में वो, क्योंकि ब्राह्मण उसी को रखते हैं, उससे उन्होंने सारे काम करने होते हैं, जन्म डेट ऑफ बर्थ, ये जन्म निकालना, मुहूर्त निकालना, ये सारा कुछ उसमें होगा, उसमें पूरा जानकारी। क्योंकि हम उसी को पढ़ते थे, क्योंकि हम हर साल नया लेके आना, फिर उसको पढ़ना, पर तो कभी भी ये कितना भी समय तक मैं उसको पढ़ता रहा, उसमें 40,000 ही रहा, 40,000 का 40,000 एक नहीं है, नहीं 40 का 40,000 के बाद 40,000 एक तो आना चाहिए था ना, 40,000 दो, 40,000 तीन, 40,000 चार, पाँच, छः, दस, उसको बढ़ते बढ़ते भी तो टाइम लगना चाहिए था ना, वो टाइम कभी भी नहीं लगा। तुम जानते हो अभी हमारी पूजा स्थापन हुई थोड़े ही है, अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़े ही है, गीता में ये थोड़े ही है कि बाप ने सहज राज योग सिखलाए, यहाँ ही राजाई स्थापन की, गीता में तो पहले दिखा दी है, दिखाते हैं और सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वे भी पहाड़ों पर गल कर मरे, राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं, वह है हद की बात, हद की रचना हद के ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, पालना भी करते हैं बाकी परले नहीं करते, पालना भी करते हैं बाकी परले नहीं करते, स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ, बाप भी है फैमिली भी है, ये बातें बड़ी गुही है, बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठ, ये बातें मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती हैं। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, नाम रूप फीचर सब भिन्न भिन्न है, एक के फीचर दूसरे से ना मिले, हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर के अपने फीचर हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में मूंगी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश, तो हम क्यों ना बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है, यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है उससे घबराना नहीं, माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे, तो मेहनत करो, बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां वश कैसे हुई, ये संपूर्ण निर्विकारी थे, ये शिक्षा इन्हों को कहां से मिली, अभी तुम बच्चों को ये बनने के लिए की शिक्षा मिल रही, इनमें कोई विकार नहीं होता, वहाँ रावण राज्य ही नहीं, वहाँ क्या नहीं है, रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है, रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते, ये कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार ये भी नून है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, इसलिए ही नेति नेति करते आए। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है न, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष है। बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर, क्या बात पक्की करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर, इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद के सरकार के मददगार, तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना, ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बात की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, ये भी प्रजा बननी, ये यहाँ भी क्या होनी है, प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनते हो, बनेंगे, तुम क्या बनेंगे, विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16108 की माला भी होती, किसकी माला होती है, 16108 की माला होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है, 8 की माला, 108 की माला की भी है, अंत में फिर 16108 की बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग की सारे विश्व को स्वर्ग बनाया, इसलिए तुमको पूजा जाता है, तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो, ये दादा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, यूं तो रुद्र माला होनी चाहिए, तुम पहले रुद्र माला फिर रुंड माला बनते, पहले नंबर में है रुद्र माला, रुद्र माला माना शिव बाबा की गले की माला जिसमें शिव भी है, रुंड माला में शिव कहाँ से आए, वे है विष्णु की माला, क्योंकि रुंड माला है विष्णु की माला। आज ध्यान से समझना है, बाबा कभी कभी कहते हैं रुंड माला मेरी भी है, मैंने वो भी पढ़ा है, आज बाबा कहते हैं रुद्र माला है मेरी, मतलब सभी आत्माएं मेरे गले का हार बनती, फिर वो रुंड माला बनती, मतलब रुंड माला का मतलब है आत्मा शरीर सहित, आत्मा शरीर सहित, और शरीर सहित जीव आत्माओं का पिता है ब्रह्मा, जीवात्माओं का पिता है ब्रह्मा, और मनुष्य जीवात्माओं का पिता, वही मनुष्य जीवात्माएं जब अपना फाइनल रिजल्ट निकलता है तो वो विष्णु के गले का हार बनते, क्योंकि हर एक जीव आत्मा को क्या बनना है, विष्णु बनना है, चाहे वो विष्णु 1 नंबर लेकर बने, 2 नंबर लेकर बने, 10 नंबर लेकर बने, 50 नंबर लेकर बने, 70 नंबर लेकर के बने, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है फेल कोई नहीं, फेल कोई नहीं होता, 1 नंबर लेने वाला भी पास है।
तो भाई जो मनुष्य
जीव
आत्मा की माला है वो रुंड माला है, और जो सिलेक्टेड
होते हैं वो रुंड
माला है। हाँ जी, जो मनुष्य जीव आत्मा की माला है वो रुंड माला है,
वो रुंड माला है, परंतु जब ब्रह्मा के गले का हार बनते हैं तो हम चैतन्य होते हैं, ध्यान रखना है। इस समय जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाती है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है प्रैक्टिकल में, लास्ट वाली आत्मा भी ब्रह्मा कुमार बनेगी, ठीक है। वो जब बाबा के गले का हार बनेंगे, पहले हम जीव आत्माएं सभी बाबा का ज्ञान लेकर बाबा के गले का हार बनेंगे, इस समय सारी आत्माएं बाबा को अपना बाबा कहेंगे प्रत्यक्ष या परोक्ष, और उसके बाद फिर क्या होगा, वो विष्णु की माला बनेंगे, वे विष्णु की माला बनेंगे। इन बातों को भी कोई समझते थोड़े है, अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार बन जाते हैं, हर धार जाए बनते हैं, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि तुम जितना याद में रहते हो फिर वहां भी नजदीक में ही आकर राज्य करेंगे, ये पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सकते। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे, सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा, इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था, 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती, देवताओं को ही 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं, तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं, इतना पुराना संवत आदि है थोड़े ही है ही, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं, पुरानी चीजें काम क्या आएंगी, कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज की बहुत वैल्यू करते हैं, सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा, कितने शिवलिंग बनाते हैं, आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ये किसको भी समझ में नहीं आता, अति सूक्ष्म रूप है, बाप ही समझाते हैं, इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ मूंगा हुआ है, ये ड्रामा रिपीट होता रहता है, ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, ये प्राय लोप हो जाता है, तो फिर कोई सहज राजयोग ठीक कैसे सकते, ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए, अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्म स्थापन हो रहे हैं, भविष्य नई दुनिया के लिए वे पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वे है इस जन्म के लिए, इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है, ये पढ़ाई होती है संगम, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, मनुष्य से देवता तो जरूर संगम युग पर बने होंगे, बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं, ये भी बाबा जानते हैं, तुम सारा दिन इस याद में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल, इसलिए चार रखो, देखो हम कहां तक याद में रह सकते हैं, देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो, कहां रहो, याद में रहो, त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हो, अलग को याद करने से देह आदि सब याद आ जाता है, बैल तो सदा लगा रहे, लिटरेचर भी हो कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए, अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं, बोले इसका पैसा क्या पैसा, बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए, तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल अलग, ये डायल आदमी आते ही कुछ न कुछ देंगे, ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए, कोई पढ़ कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, खर्चा तो तुम करते हो ना, बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं, अच्छा मीठा मीठा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बात की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भक्त जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं। जितना देशे न्यारे देही रूप में स्थित होने के की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते, जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे ये अंतर्मुखता की गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण ऐसे ही अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती। और जो बाप का प्यारा है वे स्वतः सबसे न्यारा हो जाता। लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार। साधना बीज है, साधन उसका विस्तार है और विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। हम इतना विस्तार में चले जाते हैं, साधनों में इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जो कि वास्तविकता साधना है वो उसमें छुप जाती है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूरत चेहरा द्वारा क्या करना है, आत्मिक शक्ति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का तो सामना करना समाप्त हो जाएगा। हर्षित मुख दिखाई देंगे तो माया आपका सामना नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650699770 पर केवल व्हाट्सएप करें।